नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जातिवार जनगणना कराए जाने की जरूरत बताते हुए मंगलवार को कहा कि दलितों और पिछड़ों को उनका वाजिब हक तभी मिलेगा जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातिवार जनगणना कराएगी। मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर की गई सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, बिहार सरकार द्वारा कराई गई जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज खासी सुर्खियों में हैं तथा उस पर गहन चर्चाएं जारी हैं। कुछ पार्टियां उससे असहज जरूर हैं, मगर बसपा के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की ये पहली सीढ़ी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने इसी सिलसिले में की गई एक अन्य पोस्ट में कहा, वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार को अब अपनी नियत व नीति में जन भावना व जन अपेक्षा के अनुसार सुधार करके जातीय जनगणना सर्वे अविलंब शुरू करा देना चाहिए, किंतु इसका सही समाधान तभी होगा जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराकर उन्हें उनका वाजिब हक देना सुनिश्चित करेगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आज दिल्ली, नोएडा और आसपास के इलाकों में 35 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें 7 पत्रकारों के घर और समाचार पोर्टल न्यूज़ क्लिक से जुड़े स्थान शामिल हैं। स्पेशल सेल ने समाचार पोर्टल न्यूज़ क्लिक के खिलाफ सख्त गैरकानूनी गतिविधियाँ अधिनियम के तहत एक ताज़ा मामला दर्ज किया है। ये पूरा मामला चीन से फंड हासिल करने के दावे से जुड़ा है। सूत्रों ने कहा कि फंड अवैध रूप से प्राप्त किया गया था और अधिकारियों को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। न्यूज़ क्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ईडी के छापों के चलते पहले भी ये पोर्टल चर्चा में रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 साल पहले ईडी ने बताया था कि न्यूज़ क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपये की फंडिंग हासिल हुई है। बिहार में जातीय जनगणना का डेटा रिलीज होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिलहाल हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। 6 अक्टूबर को मामला सुनवाई के लिए लगा हुआ है, उसी दिन मामला सुना जाएगा। बता दें कि सोमवार को ही बिहार सरकार ने जातीय जनगणना का डेटा रिलीज किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर सवाल उठाया है। जनगणना के मुताबिक बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी करीब 63% है। बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक राज्य की कुल 13 करोड़ की आबादी में पिछड़े वर्ग की संख्या 27.13% है। इसी तरह अत्यंत पिछड़े वर्ग की कुल आबादी 36.01% है, यानी पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की संयुक्त आबादी 63.14% है। केवल 15.52% लोग सामान्य वर्ग के हैं। अनुसूचित जाति के लोग 19.65% और अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी 1.68% है। राज्य में 3.6% ब्राह्मण, 3.45% राजपूत, 2.89% भूमिहार, 0.60% कायस्थ, 14.26% यादव, 2.81% तेली, 3.08% मुसहर, 0.68% सोनार हैं। बिहार की कुल आबादी में 81.99% हिंदू हैं। केवल 17.7% लोग मुसलमान हैं। बाकी ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा अन्य धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या केवल 1% से भी कम है। महाराष्ट्र के नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में 36 घंटों में 31 लोगों की मौत पर राजनीतिक बवाल छिड़ गया है। इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल वेब पोर्टल न्यूज़ क्लिक पर दिल्ली स्पेशल सेल की छापेमारी की चर्चा है। स्पेशल सेल ने न्यूज़ क्लिक से जुड़े 30 लोकेशन पर छापेमारी की है और कई पत्रकारों से पूछताछ की है। जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी UAPA के तहत दर्ज एक मामले को लेकर की गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रमुख घटक आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के इस कदम ने मध्य प्रदेश चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया के एकजुट होकर काम करने की संभावनाओं को और कम कर दिया है। कुल मिलाकर आप ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 2 सूचियों के माध्यम से 39 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इससे पहले पिछले माह की शुरुआत में 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी। उम्मीदवारों की दूसरी सूची में भाजपा की पूर्व विधायक ममता मीणा का नाम शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। राम सेतु को एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट पर पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप को जोड़ने वाला चूना पत्थर से बना एक सेतु है। याचिका में उक्त स्थान पर एक दीवार के निर्माण का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था। याचिका न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। ये याचिका हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने अध्यक्ष अशोक पांडे के माध्यम से दायर की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दो अलग अलग छात्रावासों में गोली चलने की घटनाओं में तीन युवक जख्मी हो गए। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सोमवार की रात छात्रों के दो गुटों के बीच टकराव में गोलीबारी की वारदात हुई। इस दौरान सादिक, फिरोज आलम और अब्दुल्ला नामक युवक जख्मी हो गए। उन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।